आत्माएं परमात्मा को भिन्न भिन्न स्वरूप में देखती हैं। कोई व्यक्ति परमात्मा को देखकर डर जाता है तो कोई उनके शरण में आने की इच्छा रखता है, कोई मनुष्य उनकी भक्ति करके ही तृप्त हो जाता है। पर परमपिता परमात्मा के साथ हमारा क्या नाता है, आइए देखते हैं।
भगवान जब इस धरा पर आकर सत्य ज्ञान देते हैं तो वे अगम निगम के सारे भेद खोल देते हैं। भगवान को ही परम सत्य, अंतिम सत्य कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ। क्यों? क्योंकि वही आकर मनुष्य को संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं। वो प्यार का सागर है तो जरूर उसने प्यार दिया होगा ना, बिना प्यार दिए भला वो प्यार का सागर कैसे बन गया? और यदि वो हम सबको प्यार ही ना दे तो उसके प्यार के सागर होने का प्रयोजन ही क्या? तो वो हमारा है, हमारा परम पिता है। विचार करो, भगवान हमारा है, हम केवल उसे भगवान कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, अदृश्य शक्ति कहते हैं, अपने को उससे दूर समझते हैं, कहीं उससे डरते हैं, उसके बारे में अनेक अनेक कल्पनाएं करते हैं, वो है भी या नहीं, परंतु हम हैं तो हमारा परम पिता भी अवश्य होगा। जब हमारा शरीर है और हम जानते हैं हमारे शरीर को जन्म देने वाला पिता होगा ही, तो जब हम आत्माएं हैं तो हमारा परम पिता अवश्य होगा। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके हैं, वो हमारा है। विचार इस तरह करें, भगवान मेरा है, मैं उसका हूं। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है, जो सबका कल्याण करने वाला है वो मेरा है। और आगे अपने चिंतन को बढ़ाएं, जब भगवान मेरा है तो उसका सब कुछ भला किसका होगा, वो भी तो मेरा हो गया ना, तो हम उसके बहुत समीप पहुंच जाएंगे। हमें महसूस होगा भगवान कोई बहुत दूर की सत्ता नहीं, वो कोई ऐसी सत्ता नहीं जिससे भयभीत हुआ जाए, वो तो हमारा है, वो तो प्यार का सागर है, वो किसी को डराता नहीं है। तो वही आकर हमें याद दिलाता है कि सतयुग के आदि में तुम सभी देवी देवता थे। यही कारण है कि तुम देवी देवताओं को प्यार करते हो। जो देवी देवता नहीं थे वो देवी देवताओं को प्यार नहीं करते। यही कारण है कि हम उन्हें सम्मान देते हैं, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतान हैं, हम देवताओं के वंशज हैं। भगवान कहते हैं, हे भारतवासी वत्सो, अपने आदि स्वरूप को पहचानो, तुम देवता थे। जिनकी पूजा कर रहे हो तुम, वो तुम ही थे। इसीलिए तो भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, यहाँ का हर मनुष्य ही देवता था, तब तो 33 करोड़ की बात है। हम देवता थे, हमारे अंदर देवत्व है, पहचाने अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को। ध्यान से देख लें, आप आंख बंद करके देखें, आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर मृदुता है, आपके अंदर सुख है, आपके अंदर दया भाव है, आपके अंदर अपनापन है, आपके अंदर सहयोग देने की भावना है, आपके चित्त में दूसरों के लिए सम्मान भी है, आपके अंदर अनेक महानताएं हैं, धैर्य है, सरलता है, निर्भयता है, सत्यता है, ईमानदारी है या नहीं? है। हम उसे दबा देते हैं, जैसे अपने विवेक का घात कर देते हैं। ध्यान दें सभी इस सूक्ष्म बात पर, हमारे अंदर देवत्व है, हम विकारों के कारण, बुराइयों के कारण, अहंकार के कारण, दूसरों को देखकर कंपटीशन में आकर कंपैरिजन करने से अपने देवत्व को दबा देते हैं, और इसलिए मनुष्य को टेंशन होता है, अंदर युद्ध चलता है, बुराइयों का, अच्छाइयों का और टेंशन पैदा करता है। हम देवों की संतान, हम अपने देवत्व को फिर से इमर्ज करें। देवी संपदा की चर्चा करते हुए भगवान कह रहे हैं, जो देवी संपदा से युक्त व्यक्ति है उसमें कर्मों में कर्तापन का अभाव रहता है। आम व्यक्ति के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि काम हम कर रहे हैं और हम ये सोचे हम नहीं कर रहे हैं। भाई लोग सोचते हैं तो फिलोसोफर्स की बात है, ये तो साधु संतों की बात है, ये तो योगियों की बात है, परंतु नहीं, ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ सत्य तथ्य है। हम इसकी सत्यता को समझ लें। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन किसी को अपने अच्छे कर्मों का अभिमान बहुत होता है। ये कर्तापन ये बुरे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। पाप कर्म करके तो बल्कि मनुष्य कह देता है मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छे कर्म करके वो बार बार वर्णन करना चाहता है कि ये काम मैंने किया, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, मेरा इतना इतना नाम है, ये काम मैंने ही किया है, वो काम मैंने ही किया। अपनी प्रशंसा करना, जो निरंतर अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, अपनी महिमा के पुल बांधते रहते हैं, वो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य नहीं है। तो यद्यपि हमारी इंडियन फिलोसफी में आत्मा को अकर्ता कहा गया है, पर प्रैक्टिकल सत्य तो यही है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही फल भोग रही है, आत्मा ही कर्म कर रही है, अकर्ता नहीं है। हम ही कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, बुद्धि से निर्णय कर रहे हैं, आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है। हमारी फिलोसफी में इस चीज को उलझा दिया है, मन बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा साक्षी है, मन बुद्धि केवल कर्म कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है, मन बुद्धि में चेतनता आई कहां से? वो आत्मा की ही तो चेतनता है, उस दोनों शक्ति मन और बुद्धि आत्मा की ही तो शक्तियां हैं। भगवान ने आकर ये रहस्य स्पष्ट किया कि मन और बुद्धि जो चेतन है, जड़ नहीं है। लोग कहते हैं मन तो अन्न से बनता है, अन्न तो जड़ है, भला जड़ अन्न से चेतन मन कैसे बनेगा? मन तो चेतन है ना, सोच रहा है, विचार कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, इच्छा कर रहा है, क्या ये जड़ चीजों के लक्षण हैं? मन स्वयं में चेतन है, मन का निर्माण अन्न से नहीं होता, मन पर अन्न का प्रभाव पड़ता है। अन्न मन को दिशा प्रदान करता है, न कि उसका निर्माण करता है। इसको भी दूसरे लैंग्वेज में कह दिया जाता है कि अन्न मन बना रहा है, यानी जैसा अन्न वैसा मन। तो हम सभी ध्यान दें, हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, हम बड़े से बड़े कर्म करें, लेकिन कर्मों में कर्तापन का अभिमान ना आने दे कि मैंने किया। ठीक है मैंने किया, लेकिन इसको सहज भाव से लें। हो सकता है संसार में मेरे से अच्छे कर्म करने वाले भी मनुष्य बहुत हों, हो सकता है संसार में मेरे से महिमा पाने वाले लोग भी बहुत हों, मेरे से अधिक टैलेंट रखने वाले लोग भी बहुत हों, मेरे से ज्यादा पुण्य और धर्म करने वाले लोग भी बहुत हों, लेकिन हम अपने थोड़े से कामों की प्रशंसा करते रहें, मैंने किया इस अभिमान में आ जाएं, जिसे मैंपन कहा जाता है, तो ये हमारे पुण्यों को छीन करता है। सत्यता यही है, क्यों हमें मैंपन में नहीं आना चाहिए? क्योंकि यदि हम कोई अच्छे कर्म करते हैं और उसकी बार बार चर्चा करते हैं, उसके अभिमान में रहते हैं, जहां तहां उसका वर्णन करते हैं, अखबारों में डलवा देते हैं, मार्बल पर लिखवा कर मंदिर के बाहर लगा देते हैं, धर्मशाला के बाहर लगा देते हैं, तो जितनी बार भी हमारे अंदर ये महसूसता होगी कि मैंने ये किया, जितनी बार भी हम उसका वर्णन करेंगे कि मैंने ये किया, उतनी ही बार पुण्यों में, पुण्य के फल में कमी आती जाएगी, क्षीण होते जाएंगे हमारे पुण्य। तो हम अच्छे काम करें और उसका हमें बहुत अच्छा फल न मिले, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना, अज्ञान हो गया ये। जब हमने अच्छा कर्म किया है, तो हमें फल भी अच्छा ही मिलना चाहिए। इसके लिए अपने अच्छे कर्मों को गुप्त कर दें, उसकी बार बार चर्चा न करें, अपने अच्छे कर्मों के साथ सूक्ष्म फीलिंग को भी समाप्त कर दें कि मैंने किया, क्योंकि ये मैंपन आत्मा को कर्मों के बंधन में बांधने वाला है। अच्छे कर्म भी तो मनुष्य को बांध रहे हैं, अच्छे कर्मों में भी तो मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। तो यदि हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है, उदाहरण ले लें, आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत अच्छी सेवाएं उसके द्वारा हो रही हैं, आपके हॉस्पिटल का बहुत नाम हो गया है, अब लोगों को ये पता नहीं ये हॉस्पिटल किसने बनवाया, आप सबको बताते हो मालूम है ये हॉस्पिटल किसने बनवाया, ये मैंने बनवाया है, मैंने इसके साथ मेहनत की है, मैंने धन इकट्ठा किया है, मैंने रात दिन एक करके ऐसा अच्छा काम किया है, तो लोग वाह वाह तो करेंगे, खुश भी हो सकते हैं, प्रेरित भी हो सकते हैं कि हम भी ऐसा अच्छा काम जीवन में करें। ये इसके अच्छे पहलू भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारी वाणी में यदि उन्हें कर्तापन का भाव दिखाई देगा, हमारी वाणी में यदि उन्हें अभिमान की झलक दिखाई देगी, तो इसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। हमें निरहंकारी बनना है, हम इस स्मृति से अच्छे कर्म करें कि अच्छे कर्म करने की शक्ति, अच्छे कर्म करने का विवेक, अच्छे कर्म करने का धन हमें स्वयं करण करावनहार परमात्मा ने दिया है। अच्छे कर्म करने की योग्यताएं गॉडली गिफ्ट है, हम तो केवल उस गिफ्ट का यूज कर रहे हैं, हम तो केवल ईश्वरीय देन का उपयोग कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। निमित्त भाव अपनाने से हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होती, जिनमें मैंपन का भाव रहता है उनकी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं, और कुछ साल बीत जाने के बाद उनका जीवन अशांति और तनाव से युक्त होने लगता है, और जो व्यक्ति निमित्त भाव से जीता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो कर्म करता है तो भी ये याद रखता है करण करावनहार परमात्मा कर्म करा रहा है। जब वो कर्म समाप्त करता है तो अपने कर्मों को पुनः वो प्रभु अर्पित कर देता है, उसे ये भान रहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु कृपा से हुआ है, उसकी मदद से हुआ है, उसकी दी हुई गिफ्ट के आधार पर हुआ है, उसके दिए हुए टैलेंट्स के आधार पर हुआ है। इस तरह हम सभी सीख लें कि यदि भी कर्म हम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, हमें सुखदायी कर्म करने हैं, हमें ऐसे कर्म करने हैं जो सारे संसार को प्रेरणा प्राप्त हो, लेकिन हमें मैंपन से मुक्त होकर कर्म करने हैं, तब हम दैवी संपदा से युक्त माने जाएंगे। जो मनुष्य दैवी संपदा से युक्त होता है वो किसी की निंदा नहीं करता, उसके चित्त में चंचलता नहीं होती, वो व्यर्थ की चेष्टाएं भी नहीं करता, उसके अंदर दया भाव होता है, उसके अंदर सभी के लिए आत्मिक प्रेम की वृत्ति होती है। हम सभी इन चीजों पर भी ध्यान दें। दूसरों की निंदा करते रहना ये वास्तव में हमारी रॉयल्टी नहीं है, हमारे चित्त की सरलता भी नहीं है। प्राय हम दूसरों की निंदा या तो ईर्ष्यावश किया करते हैं, या अभिमानवश किया करते हैं, या हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं इसलिए किया करते हैं। निंदा करना एक बहुत बड़ा अवगुण है। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होता। विचार करें, दृष्टि डालें, जब हमारी निंदा होती है तो हमें कैसा लगता है। सत्य ये भी है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों की निंदा में रहता है उसे पर निंदा का सुख तो बहुत मिलता है, वो अपने को बड़ा संतुष्ट अनुभव करता है, वो अपना गौरव बढ़ा हुआ अनुभव करता है। यदि चार लोग खड़े हैं और वो दूसरों की निंदा करता है तो वो समझता है मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। परंतु याद रहे, जो दूसरों की निंदा करने में अपनी शक्तियों को नष्ट कर देता है उसमें निंदा सुनने की शक्ति नहीं रहती। जब उसकी निंदा होती है तो वो प्राय डेड जैसा हो जाता है, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है, वो फिर दूसरों की ग्लानी करने लगता है कि लोग यूं ही मेरी निंदा करते हैं, मैं इतना भला आदमी हूँ, मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मैं इतना होशियार हूँ, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, फिर भी लोग निरंतर मेरी निंदा करते रहते हैं। नहीं, यदि आप निंदा स्तुति में समान होना चाहते हैं, यदि आप सचमुच दैवी संपदा से युक्त होना चाहते हैं, तो ये जो निंदा है, ये जो दूसरों के दोष देखने की आदत है, इससे आप अपने को मुक्त कर लें। ऐसा आप मान कर चलें कि पर निंदा भी पाप है। कभी कभी मनुष्य दूसरों के बारे में अनेक बातें कर जाया करता है, भ्रम पर आधारित बातें करता है, अनुमान पर आधारित बातें करता है, मिर्च मसाला मिलाकर दूसरे के बारे में चटपटी बातें बनाकर लोगों को का मनोरंजन कराता रहता है। ऐसे लोगों की एक मंडली बन जाती है जिनका काम ही होता है पर चिंतन करना, पर निंदा करना, दूसरों के बारे में व्यर्थ की बातें करना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। कभी कभी तो ऐसी बात भी होती है कि बात है ही नहीं और चर्चाएं हो रही हैं। सोचें आप जिसके बारे में आप ऐसी बातें कर रहे होंगे, उस पर इन बातों का क्या असर होगा? क्या ये हमारे पुण्य के खाते में जमा होगा? क्या ये हमें सुख पहुंचाएगा? क्या ये हमें शक्तिशाली बनाएगा? कदापि नहीं। इसलिए याद रखें, यदि आप महान बनना चाहते हैं, महान का अर्थ सन्यासी बनना नहीं, जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, यदि आप सफलता को हर समय अपना मित्र बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनकर समाज के सामने प्रस्तुत हों, तो ये छोटे छोटे पाप करना छोड़ दें, दयावान बने, दूसरों की प्रशंसा करें जैसे हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, सब हमारे कार्यों को एप्रिशिएट करें जैसे हम चाहते हैं कोई भी हमारे कार्यों में नुक्स न निकाले, हमारे कार्य करने पर सब वाह वाह करें, यही वृत्ति हम भी क्यों ना अपना ले दूसरों के लिए। यदि हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो हमें प्रशंसा ही सुनने को मिलेगी। दया भाव बहुत बड़ा भाव है। कुछ लोग बड़े कठोर वृत्ति के हैं, कभी उनके चित्त में दया नहीं आती, वो दूसरे को मारना खेल समझ लेते हैं, वो दूसरे को कष्ट पहुंचाने में अपने को खुशी देने वाला अनुभव करते हैं, दूसरों को कष्ट पाता देख उनको आनंद आता है, अपने कटु वचनों से वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे जो दया से हीन मनुष्य हैं, जिनके चित्त में किसी असहाय व्यक्ति के लिए, किसी गरीब व्यक्ति के लिए दया भाव नहीं है, वो वास्तव में दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति नहीं है। हम भगवान से दया की भीख मांगते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं भी दयावान हैं? जो स्वयं दयावान नहीं है, भला भगवान उन पर दया कैसे करेगा? तो भाई और बहनों, आओ हम सभी पुनः एक बार अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपने स्वभाव पर, अपने गुण और अवगुणों पर दृष्टि डालें, अपने अवगुणों को पहचाने। हमारे अंदर यदि कोई आसुरी अवगुण घर कर गया है, उसको निकाल फेंकें, दैवी गुण अपने जीवन में अपनाएं, तो परिवार में, समाज में हमारा मान भी बढ़ेगा, हमारा जीवन सुख शांति का भंडार भी बनेगा और सफलता हमारे चरण चूमेगी। ओम शांति।
परमात्मा प्यार का सागर है, तो क्यों ना हम अपने संबंध उसके साथ जोड़कर उस प्यार की अनुभूति करें। जब हम परमपिता परमात्मा पर अधिकार रखेंगे तो वो भी उस प्यार का रिटर्न जरूर देंगे। इसी के साथ हम 46वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अगले सप्ताह गीता श्रृंखला को जारी रखते हुए हम फिर मिलेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। नमन।
शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे जो